Iran Radio Podcast. दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। हिंदुस्तान में 1857 के गदर के बाद इस देश में अंग्रेज़ों की हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी। बड़ी संख्या में उनके फौजी अफसर और कर्मचारी मारे गए थे और देश में कहीं भी उन्हें सुरक्षा हासिल नहीं थी। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 27वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों की हालत की। हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो चुका था। इंग्लैंड एक महत्वपूर्ण नीति के आधार पर हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था और इस नीति का पालन उन कानूनों में भी किया जाता था जो ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किए जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार इस नीति का औपचारिक रूप से ऐलान भी करते थे। ये नीति एक जुमले में इस तरह बयान की जाती थी, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज इस नीति का फौज में भी कड़ाई से पालन करते थे और मुसलमान, हिंदू और सिख फौजियों के बीच फूट डालते थे। लेकिन जैसे ही ये एकजुट हुए, ब्रिटेन को इससे बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अंग्रेज अब भी निराश नहीं हुए थे। आम लोगों के बीच फूट डालने के प्रयास उन्होंने पहले से भी ज़्यादा तेज कर दिए थे। धार्मिक मतभेदों को अंग्रेज़ों ने अपने लिए सबसे अच्छे अवसर के रूप में देखा। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी कौमें थीं, हालांकि इनके अलावा दूसरे धर्मों के मानने वाले भी थे। सिखों के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से मतभेद थे। पंजाब प्रांत में सिखों की संख्या अच्छी खासी थी। अंग्रेज़ सबसे आखिर इस इलाके पर कब्जा करने में सफल हुए थे। ब्रिटिश एजेंट सूफियों या अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं के भेस में लोगों के बीच जाते थे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे। इन एजेंटों को साधु कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए पहले भी कई बार बनावटी साधुओं का इस्तेमाल किया था। उनके लिए हर एक साधु सेना की एक बटालियन से ज़्यादा महत्व रखता था। जब क्रांति अपने चरम पर थी और कई बड़े शहर अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गए थे तो अंग्रेज़ कमांडर ने फूट डालो राज करो की नीति पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। उसने पंजाब में सिखों को संदेश भेजा कि हिंदू ताकतवर हो रहे हैं और अगर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ निकल जाएंगे तो हिंदू सिखों पर रहम नहीं करेंगे। देश में हिंदुओं और मुसलमानों के आंदोलन का फ़ायदा उठाकर पंजाब में सिख स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते थे, लेकिन हिंदुओं से दुश्मनी की खातिर उन्होंने अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। सिखों ने अंग्रेज सेना के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया और सितंबर 1857 में शहर की घेराबंदी कर ली। 7 दिन तक दिल्ली की घेराबंदी जारी रही। इस दौरान ब्रिटिश तोपखाने ने दिल्ली पर भीषण गोलाबारी की। जो जवान शहर की रक्षा कर रहे थे उन्हें पता था कि वे लंबे समय तक बड़ी संख्या में सिख और अंग्रेज़ फौजियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो डटे हुए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर से निकल सकें। जब अंग्रेज़ फौजियों ने शहर में प्रवेश किया तो कई घर जमींदोज हो चुके थे, अक्सर लोग शहर छोड़ चुके थे। अंग्रेज़ उन घरों की तलाशी लेते थे जिनके मालिक शहर छोड़कर नहीं भागे थे। अगर किसी घर में ब्रिटेन से संबंधित कोई चीज़ मिल जाती थी तो पूरे परिवार को गोली मार देते थे। उनका कहना था कि गदर के दौरान ज़रूर ये चीज़ अंग्रेज़ों से लूटी गई होगी। सिख सेना ने इलाहाबाद जैसे शहरों पर कब्जा करके उन्हें अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। हिंदुओं के इस खिलाफ सिखों की दुश्मनी देखकर अंग्रेज़ काफ़ी खुश थे और उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई भी एक भारतीय सिपाही को उसकी बंदूक के साथ पकड़ कर लाएगा, उसे 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर सिपाही को बिना हथियार के लाएगा तो सिर्फ 25 रुपये के इनाम से नवाजा जाएगा। अट्ठारह की शुरुआत में कानपुर और लखनऊ पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। उन्होंने इन शहरों में जमकर कत्लेआम किया। दोनों शहरों के बीच रास्ते में जितने भी पेड़ थे, हर पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। एक अंग्रेज़ कमांडर ने हिंदुस्तानियों का नरसंहार करने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया। वो आम के पेड़ की डाल पर एक रस्सी को डालकर उसके एक सिरे को एक समूह में शामिल 8 लोगों की गर्दन में बांध दिया करता था और उसका दूसरा सिरा हाथी की गर्दन में। उसके बाद हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता था। एक साथ 8 लोग ऊपर खींच लिए जाते थे और एक साथ फांसी पर लटक जाते थे। आंदोलन को कई शहरों में कुचल दिया गया था, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर नरसंहार जारी था। ब्रिटिश सैनिकों की क्रूरता इतनी ज़्यादा थी कि खुद ब्रिटिश कमांडर उसे देखकर कांप उठते थे। उन्हें यह भी डर था कि आम लोगों के नरसंहार और खेतों को नष्ट करने के बाद ब्रिटेन के लिए वहाँ कुछ नहीं बचेगा। आखिरकार कंपनी के कमांडर ने अपने सैनिकों से कहा कि नरसंहार बंद कर दिया जाए। जब कमांडर के आदेश की यह खबर ब्रिटेन पहुंची तो लंदन में बवाल हो गया, क्योंकि लंदन में अक्सर लोगों का मानना था कि हिंदुस्तानियों को आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कोई इस तरह के आंदोलन का साहस ना कर सके। लोगों ने कंपनी के दफ्तर के सामने एक बड़ा सा बैनर लटका दिया था, जिसमें कमांडर को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन वो बहादुर शाह जफर को शहर में तलाश नहीं कर सके। सम्राट शहर से निकल चुके थे। कुछ समय बाद बूढ़े सम्राट को दिल्ली के पास एक बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अगले दिन उनके 2 बेटों और 1 पोते को भी पकड़ लिया गया। राजकुमारों को दिल्ली में एक बग्घी में घुमाया गया। जिस अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उसने उन्हें नंगा होने का आदेश दिया। राजकुमारों को लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने पड़े। अंग्रेज़ अफसर जब आश्वस्त हो गया कि लोग उन्हें नग्न अवस्था में देख चुके हैं, तो बग्घी पर चढ़ा, तमंचा निकाला और तीनों को मौत के घाट उतार दिया। शाह जफर को महल के बजाय एक छोटे से घर में कैद कर दिया गया, ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अदालत ने आखिरी मुग़ल सम्राट को देश निकाला दे दिया। अंग्रेज़ हुकूमत ने उन्हें बर्मा भेज दिया। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी अंग्रेज़ हुकूमत के लिए काफ़ी महत्व रखती थी। इससे वो भारतीयों को ये मैसेज देना चाहते थे कि आखिरी मुग़ल सम्राट अब उनकी गिरफ्त में है, इसलिए अब किसी को बगावत का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के सिखों की मदद से 1857 का आंदोलन कुचल दिया। उस समय इस कंपनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, लेकिन इस फौज के अक्सर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इस बड़े विद्रोह पर बहुत ही मुश्किल से अंग्रेज़ों ने काबू पाया। आंदोलन को कुचलने पर उन्होंने 98 मिलियन लीरा खर्च किया। कंपनी को ब्रिटिश सरकार की मदद के बिना इस नुकसान की भरपाई करनी थी। इसके लिए उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो भारतीयों के कत्लेआम पर आने वाला बड़ा खर्च खुद उनकी जेबों से ले ले। कंपनी ने सेना के पुनर्निर्माण पर आने वाले खर्चे की आपूर्ति के लिए भारी टैक्स और लगान लगाने का फैसला किया। हालांकि इस टैक्स से हासिल होने वाली राशि को कंपनी के खजाने तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। शहर, गांव और खेत नष्ट हो चुके थे। बड़ी संख्या में किसानों की हत्याएं कर दी गई थीं या वो जान बचाकर भाग गए थे। क्रांति की आग बुझ गई थी, लेकिन कंपनी की व्यवस्था भी चौपट हो गई थी। अक्सर अंग्रेज़ों का मानना था कि अब कंपनी हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकती, इसलिए ब्रिटिश सरकार को इस देश के शासन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का प्रस्ताव पेश किया और उसके स्थान पर एक नया मंत्रालय इंडियन मिनिस्ट्री के गठन का प्रस्ताव रखा, जो भारत से संबंधित मामलों का प्रबंधन करे। भारत में ब्रिटिश गवर्नर के पद का नाम बदलकर ब्रिटिश वायसराय कर दिया गया। इस दौरान ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने एक भाषण में बड़े ही अहंकार में कहा कि हिंदुस्तान मेरा है। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी शेयर खरीदने का फैसला किया और शेयर धारकों को राजी करने के लिए शेयरों की दुगनी कीमत लगाई। اس کمپنی کے ایک شیئر کی قیمت 100 لیرہ تھی، لیکن سرکار نے اسے 200 لیرہ میں خریدا۔ اب سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی رقم برٹش سرکار کہاں سے لائے گی؟ کمپنی کے شیئروں کی خرید پر آنے والی راشی کو برٹش سرکار نے پرتی بھارتیہ پر قرض مانا۔ اس طرح انیہ کروں کے ساتھ ہی بھارت میں برٹش ادھیکاریوں کو نئی راشی بھی وصولنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس پرکار برٹش سرکار نے اسے بھارتیوں پر اپنا قرض مانا، اس لیے اس قرض کا بیاج بھی اسے ملنا چاہیے تھا۔ اس نے بھارتیوں سے کئی قسطوں میں اسے وصول کرنے کے لیے مول راشی میں 10% کا اضافہ کر دیا۔ انگریز دنیا بھر میں دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائیوں کا انوبھو رکھتے تھے۔ ان کے بیچ ایک محاورہ مشہور تھا کہ بھالے کی نوک سے کئی کام کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اس پر بیٹھا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طاقت کے بل پر حکومت کی جا سکتی، لیکن طاقت اور رکت پات کے ذریعے ہمیشہ کے لیے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ 1857 کی کرانتی انگریزوں کے لیے اس محاورے پر عمل کرنے کے لیے ایک بڑا پاٹ تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھارتیہ پھر سے آندولن کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس لیے انہوں نے بھارت پر حکومت کرنے کی نیتی میں بدلاؤ کر دیا۔ انہوں نے بھارتیوں کو سرکاری وبھاگوں میں کام کرنے کے لیے بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لیے ان کی پڑھائی کا بندوبست بھی کیا۔ بھارتیوں کی پڑھائی کے لیے اسکولوں کی استھاپنا کی گئی، لیکن مہیلاؤں کی پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مہان آندولن کے ایک سال بعد رانی وکٹوریا نے ایک آدیش میں گھوشنا کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت میں رنگ اور جاتی کی پرواہ کیے بنا ہم کاریالیوں میں سکشم لوگوں کی بھرتی کریں گے، اور سبھی کو ان کی کشمتاؤں کے انوسار نیوکت کیا جائے گا۔ 90 سال بعد تک جب بھارت نے آزادی حاصل کی اور وہ برٹش قبضے سے مکت ہوا، تو کاریالیوں میں صرف 4% ہی کرمچاری بھارتیہ تھے، ان میں سے کوئی بھی اچ پد پر نہیں تھا۔ بھارتیوں کی شکشا صرف انگریزی اسکولوں تک سیمت تھی۔ برٹش سرکار نے کسی بھی سمبھو طریقے سے پرامانک بھارتی اسکولوں کی پرگتی کو روکنے کا پریاس کیا۔ بھارت میں انگریزوں کے آگمن سے پہلے مدرسوں کا نرماڑ پروپکاری لوگ دوارا کیا جاتا تھا۔ لوگوں نے ان مدرسوں اور ودیالیوں کے لیے زمینیں بھی وقف کی تھیں تاکہ ودیالیوں کا سنچالن اس سے ہونے والی آمدنی سے ہو سکے۔ اسے ودیالیوں کے لیے بھومی بندوبست کہا جاتا تھا۔ بھارت سرکار نے لوگوں کو شکشت کرنے میں مدد کرنے کے لیے ان بھومیوں سے کر نہیں لیا۔ جب انگریزوں نے بھارت پر قبضہ کیا، تو انہوں نے ان وقف زمینوں پر بھی کر لگا دیا، اور اگر کوئی اسکول یہ کر نہیں دے پاتا تھا تو اس سے وہ زمین چھین لی جاتی تھی۔ انگریزوں دوارا ان زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد مدرسوں اور اسکولوں کے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں بچے، تو ان اسکولوں کو بند کر دیا گیا۔ اس طرح سے انگریزوں نے بڑی سنکھیا میں استھانیہ اسکولوں اور ودیالیوں کو بند کروا دیا۔ بھارتیوں کو ان کی پارمپرک شیلی میں شکشا حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ایک دوسرا قدم اٹھایا گیا، وہ پرکاشت ہونے والی پستکوں کو ان تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ حیدرآباد میں گھٹنے والی گھٹنا انگریزوں کے اسی آچرن کا پریڑام تھی۔ حیدرآباد ان راجیوں میں سے ایک تھا جہاں ظاہری طور پر سوتنتر سرکار تھی۔ بھارت کے اس بھاگ پر ایک بھارتیہ ویکتی شاسن کرتا تھا، لیکن کمپنی کے پرتندھی نے اس کے سبھی معاملوں میں ہستکشیپ کرنا شروع کر دیا۔ حیدرآباد کے شاسک نے یورپ میں چھپائی مشینوں کے بارے میں خبر سنی تھی۔ انہوں نے برٹش پرتندھی سے اس مشین کا ایک نمونہ بھارت لانے کے لیے کہا۔ کچھ سمے بعد انگریز ایک پرنٹنگ پریس حیدرآباد دربار میں لے گیا۔ حیدرآباد کے شاسک نے مشین کو آشچریہ اور پرشنسا سے دیکھا، لیکن جب اس کی جگیاسا سماپت ہو گئی تو اس نے اسے بھنڈارن میں لے جانے کا آدیش دیا۔ شاسک نے کتاب چھاپنے کے لیے ابھی اس مشین کا پریوگ نہیں کیا تھا، لیکن جب اس گھٹنا کی خبر بھارت میں انگریز گورنر تک پہنچی، تو اس نے حیدرآباد کے پرتندھی کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ اسے بھارتیوں کو پرنٹنگ پریس دینے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ گورنر کے آدیش پر پرتندھی نے مشین کو توڑنے اور اسے نشکرے کرنے کے لیے اپنے گپت ایجنٹ کو محل کے گودام میں بھیجا۔ انگریزوں کو بھارت کے لوگوں کو پرنٹنگ پریس کا اپیوگ کرنے کی انومتی دینے میں ورشوں لگ گئے۔ بھارتی جنتا کی سنسکرتی کو کمزور بنائے رکھنے کے لیے انگریزوں نے اس دیش کی پرشاسنک بھاشا کو بھی بدل دیا۔ ان کے قبضے سے پہلے بھارتی کاریالیوں اور منترالیوں کی بھاشا فارسی تھی۔ سبھی پرشاسنک پتر فارسی میں لکھے جاتے تھے، اور سرکاری فرمان اور گھوشنائیں بھی فارسی میں پرکاشت ہوتی تھیں۔ بھارت میں بڑی سنکھیا میں لوگ فارسی بولتے تھے اور اسے دوسری بھاشا کے روپ میں سیکھتے تھے۔ فارسی زبان جاننے کی وجہ سے وہ افغانستان، ایران اور مدھ ایشیائی دیشوں کے لوگوں سے جڑے ہوئے تھے۔ वे ईरानी शायरों के शायरी पढ़ते थे और ख़ुद भी फारसी भाषा में शेर लिखते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने कार्यालयों की भाषा इंग्लिश कर दी। उसके बाद से जो भी चाहता था कि वो कार्यालय में भर्ती हो, उसके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी था। इंग्लिश के विस्तार के कारण धीरे धीरे हिंदुस्तान से फारसी गायब हो गई। अंग्रेज़ों का मकसद भी यही था।